नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। गैड सात की पुस्तक सुसाइडल एम्पैथी डाइंग टू बी काइंड समकालीन राजनीति और संस्कृति पर एक विवादास्पद वैचारिक आलोचना है। विकासवादी मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि वाले साध इसमें तर्क देते हैं कि सहानुभूति अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन जब वह परिणामों, पारस्परिक दायित्वों और सार्वजनिक सुरक्षा से कट जाए तो वह समाज के लिए हानिकारक बन सकती है। लेखक इस स्थिति को सुसाइडल एम्पैथी कहते हैं। उनका दावा है कि पश्चिमी समाजों में अपराध, अवैध प्रवासन, पहचान आधारित राजनीति और संस्थागत निर्णयों पर भावनात्मक नैतिकता का प्रभाव बढ़ा है। पुस्तक का उद्देश्य पाठक को करुणा त्यागने के लिए कहना नहीं, बल्कि करुणा और विवेक के बीच संतुलन की मांग करना है। सात का लेखन अकादमिक शोध, सांस्कृतिक टिप्पणी और तीखे राजनीतिक तर्क का मिश्रण है, इसलिए यह पुस्तक विचारोत्तेजक होने के साथ ध्रुवीकरण पैदा करने वाली भी है। इसे एक निष्पक्ष सामाजिक विज्ञान ग्रंथ के बजाय स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण वाली सांस्कृतिक आलोचना के रूप में पढ़ना अधिक उचित है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सुसाइडल एम्पैथी सहानुभूति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसकी गलत दिशा की आलोचना। पुस्तक का केंद्रीय विचार सुसाइडल एम्पैथी है, जिसे साध ऐसी अतिरेकपूर्ण और गलत दिशा में लगी सहानुभूति के रूप में परिभाषित करते हैं, जो अंततः सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति या समाज को नुकसान पहुंचाती है। उनके अनुसार किसी भावना का नैतिक मूल्य केवल उसकी तीव्रता से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि वह किसके प्रति, किस परिस्थिति में और किन परिणामों के साथ लागू हो रही है। उदाहरण के लिए, किसी अपराधी की कठिन पृष्ठभूमि समझना उपयोगी हो सकता है, लेकिन यदि इसी समझ के कारण पीड़ित की सुरक्षा और न्याय की जरूरत गौण हो जाए तो लेखक इसे नैतिक प्राथमिकताओं का उलटफेर मानते हैं। साथ की दलील है कि सहानुभूति तत्काल पीड़ा पर ध्यान खींचती है, जबकि नीति को दीर्घकालिक प्रोत्साहनों और जोखिमों को भी देखना चाहिए। इसीलिए वे करुणा के स्थान पर क्रूरता की वकालत नहीं करते, बल्कि विवेकपूर्ण करुणा की बात करते हैं। आलोचकों की मुख्य आपत्ति यह है कि यह अवधारणा जटिल सामाजिक समस्याओं को बहुत सरल विरोधों में बांट सकती है। फिर भी पुस्तक का उपयोगी प्रश्न यही है कि क्या अच्छी नीयत वाला निर्णय भी अपने अनुमानित परिणामों के कारण हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दूसरा, विकासवादी मनोविज्ञान से नैतिक भावनाओं की सीमाओं को समझने का प्रयास। साध अपने तर्क को विकासवादी मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। उनका आधार यह है कि सहानुभूति सहयोग और समूह के भीतर परोपकार मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण अनुकूलन रहे हैं। ये प्रवृत्तियां परिवार, निकट समुदाय और परस्पर निर्भर समूहों में विश्वास बनाने में मदद करती हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि आधुनिक, विशाल और मीडिया संचालित समाजों में यही भावनात्मक तंत्र ऐसे संदर्भों में सक्रिय हो सकता है जहां उसके परिणाम अलग हो। दूर की पीड़ा की जीवंत छवियां, नैतिक प्रतिष्ठा पाने की इच्छा और समूह द्वारा स्वीकृति का दबाव निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। साध इस प्रक्रिया को भावनात्मक तंत्र के हाईजैक होने के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
ऐसे अगर हमारे गाड़ी चुका लड़का,
उनके लिए प्रश्न यह नहीं कि मनुष्य को सहानुभूति रखनी चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि सहानुभूति को तथ्य, अनुपात, दायित्व और जोखिम के साथ कैसे जोड़ा जाए। यह ढांचा पुस्तक को केवल राजनीतिक नारेबाजी से कुछ हद तक अलग बनाता है, क्योंकि यह मानवीय भावनाओं के कार्य और दुरुपयोग पर चर्चा करता है। फिर भी विकासवादी व्याख्याओं को अंतिम प्रमाण नहीं मानना चाहिए। सामाजिक व्यवहार पर इतिहास, अर्थव्यवस्था, संस्थाएं और व्यक्तिगत अनुभव भी गहरा प्रभाव डालते हैं। पाठक को साध के जैविक दृष्टिकोण को एक व्याख्यात्मक लेंस की तरह देखना चाहिए, संपूर्ण उत्तर की तरह नहीं। तीसरा, नैतिक प्राथमिकताओं का उलटफेर, पीड़ित, अपराधी और नागरिक दायित्व। पुस्तक में साध बार बार नैतिक प्राथमिकताओं के उलटफेर की बात करते हैं। उनके अनुसार, जब सार्वजनिक विमर्श में अपराधी की परिस्थिति, इरादा या पहचान को पीड़ित के अधिकारों और सुरक्षा से अधिक महत्व मिलने लगे, तब न्याय का संतुलन बिगड़ता है। वे दंड व्यवस्था में अत्यधिक नरमी, सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा और संपत्ति तथा आत्मरक्षा के अधिकार जैसे विषयों को इस चिंता से जोड़ते हैं। उनका तर्क है कि किसी व्यक्ति के प्रति मानवीय संवेदना रखना और उसके नुकसानदेह व्यवहार के लिए जवाबदेही तय करना परस्पर विरोधी नहीं है। इसके विपरीत, स्पष्ट सीमाएं और निष्पक्ष परिणाम कमजोर लोगों को भी सुरक्षित रखते हैं। साद इस विचार को नागरिकता के दायित्व तक बढ़ाते हैं। वे मानते हैं कि सरकार और समाज की पहली जवाबदेही उन लोगों के प्रति होती है जिनकी सुरक्षा और अधिकारों के लिए वे संस्थाएं बनी हैं। इस दावे में नैतिक निकटता और सामुदायिक दायित्व की धारणा केंद्रीय है। आलोचक कह सकते हैं कि अपराध, बेघरपन या सामाजिक असमानता को केवल कठोरता से नहीं सुलझाया जा सकता। पुस्तक की ताकत समाधान की पूर्ण रूपरेखा देने में नहीं बल्कि इस असुविधाजनक प्रश्न को सामने रखने में है कि करुणा की भाषा कहीं पीड़ितों की आवाज को दबा तो नहीं रही। चौथा, वोकिज्म, पहचान राजनीति और संस्थागत नैतिक संकेतों पर सांस्कृतिक प्रहार। सात, सुसाइडल एम्पैथी को वोकिज्म, पहचान राजनीति और उत्तर आधुनिक सत्य संबंधी संदेह से जोड़ते हैं। उनका दावा है कि कुछ संस्थागत परिवेशों में व्यक्ति को किसी मुद्दे के तथ्यात्मक या व्यावहारिक पक्ष से पहले यह प्रदर्शित करना पड़ता है कि वह पर्याप्त रूप से दयालु, समावेशी और नैतिक है। लेखक इसे नैतिक संकेत देने की प्रवृत्ति से जोड़ते हैं जिसमें सही दिखना सही निर्णय लेने से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके अनुसार जब असहमति को असंवेदनशीलता या घृणा के प्रमाण की तरह पेश किया जाता है तब नीति पर खुली बहस कठिन हो जाती है। इस आलोचना का लक्ष्य विश्वविद्यालयों, मीडिया और पेशेवर संस्थाओं में बनने वाली भाषा और प्रोत्साहन संरचनाएं हैं। साध मानते हैं कि ऐसी संरचनाएं लोगों को जोखिम, सीमा और सांख्यिकीय परिणामों पर बोलने से हतोत्साहित करती हैं। यह पुस्तक का सबसे स्पष्ट राजनीतिक भाग है और यहीं इसकी सीमाएं भी सबसे अधिक दिखती हैं। वो किस्म एक व्यापक और विवादित शब्द है जिसे अलग अलग लेखक अलग अर्थों में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए साध के निष्कर्षों को स्वीकार करने से पहले पाठक को देखना चाहिए कि कौन से उदाहरण वास्तव में संस्थागत पैटर्न दिखाते हैं और कौन से केवल चयनित घटनाएं हो सकते हैं। फिर भी पुस्तक भावनात्मक नैतिकता और विचार की स्वतंत्रता के तनाव को गंभीरता से उठाती है। अंत में प्रवासन, सामाजिक सीमाएं और सभ्यतागत आत्मरक्षा का विवादित तर्क। साध के तर्क का सबसे विवादास्पद विस्तार प्रवासन और सभ्यतागत आत्मरक्षा से जुड़ा है। वे कहते हैं कि किसी समाज को बाहरी लोगों की कठिनाइयों के प्रति करुणा रखनी चाहिए पर उसे अपनी कानूनी सीमाओं, सामाजिक एकता और सुरक्षा के प्रति भी जिम्मेदार रहना चाहिए। उनके अनुसार जब अवैध प्रवासन या सांस्कृतिक टकराव पर चर्चा केवल सहानुभूति की भाषा में की जाती है और क्षमता, कानून, एकीकरण तथा सुरक्षा के प्रश्नों को अनैतिक मानकर हटाया जाता है तब नीति असंतुलित हो जाती है। साध इस प्रवृत्ति को पश्चिमी उदार लोकतंत्रों की आत्मरक्षा क्षमता के क्षरण के रूप में देखते हैं। वे यह भी संकेत करते हैं कि बाहरी प्रतिद्वंद्वी और वैचारिक आंदोलन सामाजिक विभाजन का लाभ उठा सकते हैं। इस हिस्से को विशेष सावधानी से पढ़ना जरूरी है। प्रवासन के प्रभाव एक जैसे नहीं होते और कानूनी स्थिति, श्रम बाजार, मानवीय दायित्व तथा स्थानीय परिस्थितियां नीति को बदल देती हैं। आलोचकों को चिंता है कि इस प्रकार की भाषा पूरे समूहों के बारे में भय और सामान्यकरण को बढ़ा सकती है। फिर भी पुस्तक एक वास्तविक नीति तनाव को रेखांकित करती है। मानवीय सहायता की जरूरत और राजनीतिक समुदाय की सीमित क्षमता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। निष्कर्ष में सुसाइडल एम्पैथी उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है जो समकालीन सांस्कृतिक संघर्षों, विकासवादी मनोविज्ञान और सार्वजनिक नीति में नैतिक भावनाओं की भूमिका पर बहस करना चाहते हैं। यह उन लोगों को भी आकर्षित करेगी जो अपराध नीति, प्रवासन, संस्थागत भाषा और पहचान राजनीति के बारे में प्रचलित प्रगतिशील व्याख्याओं से असंतुष्ट हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ किसी तैयार नीति सूची में कम और निर्णय लेते समय परिणाम, प्रोत्साहन, सीमाएं तथा प्राथमिक दायित्व पूछने की आदत में अधिक है। यह पाठक को याद दिलाती है कि पीड़ा को पहचानना पर्याप्त नहीं, उसके प्रति प्रतिक्रिया के व्यापक प्रभावों पर भी विचार जरूरी है। इसी के साथ इसे आलोचनात्मक दूरी रखकर पढ़ना चाहिए। साध की शैली जानबूझकर तीखी है। उनके उदाहरण अक्सर चरम स्थितियों पर केंद्रित हैं और उनके व्यापक सभ्यतागत निष्कर्षों पर वैध असहमति संभव है। समान विषय की पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान, इसका यादगार शब्द सुसाइडल एम्पैथी और उसे विकासवादी मनोविज्ञान तथा राजनीतिक संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास है। जहां अनेक पुस्तकें केवल सहानुभूति को नैतिक आदर्श मानती हैं, साध उसके लक्ष्य, अनुपात और परिणाम की जांच की मांग करते हैं। एक संतुलित पाठक के लिए सर्वोत्तम तरीका यह है कि वह पुस्तक को करुणा के निषेध के रूप में नहीं बल्कि करुणा और विवेक के संबंध पर एक पक्षधर लेकिन चुनौतीपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में पढ़े। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं गार्ड साध, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।